ना ये वो, आपको बड़ी उल्टियां आ रही थी, तो आपके लिए भी मैं एक काउंटर ऑफेंसिव जो है मैं शो करना चाहती हूँ. यू हैव सक्सेसफुली वेस्टेड 365 डेज.
आई एम प्राउड ऑफ इट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट.
यानी कि मतलब आप जवान है तो और अब आपके साथ कोई जवान नहीं हो सकता है, खाली आप एक दुनिया में जवान है. आप तो 16 के हैं, ठीक है, हम मानते हैं.
कहा कि हाँ, अगर वो नेचुरल मेरी अंदर से निकली थी सारी.
अच्छा अच्छा अच्छा.
अपने कपड़े चेंज करके आया हूँ. वो जो है, अगर अगर कुछ लोग यहाँ जवान हैं तो हम तो नौजवान होंगे.
हाँ, आप नौजवान हैं, आप तो 16 के हैं ना, आप तो 16 के हैं. चलो ठीक है,
आई डोंट लाई, आई एम 27.
अच्छा. तो आमिर के मुताबिक मैंने तो चार जंगें देखी हैं.
हाँ ना,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1965, 1971.
आपने अली खान के जमाने में जो जंग हुई थी
वही 65
से पहले वाली जंग
वो में. अच्छा, 58 की. अच्छा,
वो जंग देखी, फिर 65 की देखी,
फिर 71 की देखी. अच्छा,
अब जो जंगें जा रही है, तो सारी जंगें तो आपने. बहुत सारे लोगों का तो कहना ये है कि उनमें से कुछ जंगों की कॉज आप थी.
बिल्कुल बिल्कुल. नाट्सी जर्मनी के साथ तो मेरा ही बड़ा गठबंधन था. बड़ा क्लोज गठबंधन था मेरा उनके साथ. हम समझते हैं, सही कह रहे हैं, आप पहुंच गए हैं, बिल्कुल सही. अब मुझे लग रहा है कि शायद आप अच्छे जर्नलिस्ट बन जाएंगे.
हाँ, आपके साथ बैठ बैठ के वो क्या कहते हैं, आप ज्ञान मिल गया.
हाँ, ज्ञान मिल गया आपको, बहुत ज्ञान.
क्या
क्या ज्ञान मिला मनोज भाई, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आप बहुत खुशनसीब हैं जो मेरे साथ काम कर रहे
हैं.
अच्छा जी. अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राइट कस्टम कैबिनेट्री इंक. ये कहते हैं जी, हम बड़े जबरदस्त और परफेक्ट तरीके से आपके जो भी कोई किचन के मामलाते हैं, आपके काउंटर टॉप्स हैं और कैबिनेट्स हैं, रेनोवेशंस हैं, कुछ भी आपने करनी है, और इसमें फाइनेंसिंग जो है वो 12 मंथ्स का वो देते हैं, नो इंटरेस्ट एंड नो पेमेंट. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आप अपना पीआरआर करना चाहते हैं किचन, तो आप सैफ को कॉल करें. इनका नंबर है 6473008473. और जनाब, इसके अलावा आज आ गया है वीक द एंड है जी, तो नान एंड कबाब पे जरूर जाएं, वहां पे अपना ऑर्डर डालें. आपको बहुत ही जबरदस्त ग्रिल्ड आइटम्स मिलते हैं जो जाहिर है कि आपको पितला दुबला रखेंगे मजीद भाई की तरह. तो ये है 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 के ऊपर. आप इनको कॉल कर सकते हैं ऑर्डर डालने के लिए 416-285-8191. एंड जनाब, ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, यहां पे होते हैं फैसल चट्टा साहब. आप इनको भी कॉल कर सकते हैं. इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में. इसमें अगर आपको ऑर्डर डालना है तो आप कॉल कर सकते हैं 905-232-3663. और इसके अलावा जो दूसरा इनका रेस्टोरेंट है ओकफिल में, वो है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर. तो वहां पे अगर आपको ऑर्डर डालना है तो आप इनको कॉल करें 905-226-2294 पे. ठीक है जी. हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी खबर में. थोड़ी सी तो माजिद भाई ने इस खबर के बारे में आपको दिया है. नाइग्रा बाउंड जो ये QEW थी, इसके ऊपर ये देखें, जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको ये तस्वीर नजर आएगी कि कितने बुरे तरीके से ये जो टैंकर है ये गिरा है, और सारा फिर इसमें से बड़ी ये जो इनकी डेंजरस किस्म की कार्गो थी ये सारी स्पिल की है वहां पे, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल था, डीजल था, और जो है उसमें फिर साफ करने में इनको काफी टाइम लग गया. तो ये शट डाउन इन्होंने कर दी थी. ये जो जा रही थी वेस्ट ऑफ सेंट कैथरीन पे रोड, और जो ट्रोनो बाउंड रोड्स थी, फिर उनको तकरीबन आज सुबह 10:30 के करीब खोल दिया गया था. ओपीपी ने कहा जी कि ये काफी आज का जो मॉर्निंग था वो बिजी रहा, क्योंकि ये सारा इलाका जो है साफ करते रहे. हुआ ये था कि दो व्हीकल्स जो थी दे गॉट टैंगल्ड, क्योंकि उनकी जो हुई थी टक्कर ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ हुई थी, और जो ट्रैक्टर ट्रेलर का जो ड्राइवर था वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया था. उसको बहरहाल मुश्किलों से वो फिर काट के निकाला, क्योंकि डिच में ये सारा कुछ गिर गया था, तो उसको निकाला, उसको हॉस्पिटल में भेजा. अभी पता नहीं है उसको इंजरीज कैसी हैं. बहरहाल जो ड्राइवर एक गाड़ी का था उसने तो खुद से वो जो है अपनी जान बचा ली, जंप कर ली गाड़ी से. तो ये जो है ट्रैक्टर ट्रेलर, इसके टायर्स जो हैं वो भी रिप ऑफ हुए हैं, और फायर डिपार्टमेंट भी यहां पे आज देखा गया था. इसके अलावा जो आसपास के एरिया के जो लोकल रेजिडेंट्स थे उनको फिर इवैक्यूएट फटाफट वहां से किया गया था, कि कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए एरिया.
फ्यूम्स, नो फ्यूम्स की वजह से भी. हाँ. क्योंकि ट्रक वॉज कैरिंग 50,000 लीटर ऑफ फ्यूल,
फ्यूल जी
एंड डीजल.
हाँ जी, जी.
तो उसको उसको जो है उसका 25,000 हाफ ऑफ द टैंकर ऑलरेडी उसमें स्पिल हो गया
था. हाँ जी, तो वो आग भी लगने का खतरा था. exactly. इसीलिए वो फायर वाले भी खड़े हुए थे, सारे थे. तो फ्यूम्स उड़ी रहे थे, तो उन्होंने फिर रेजिडेंट्स को वहां से किया, तो वो कहते हैं जी ये सारे डिच में जाके गिरे हैं, तो अब इनको फिर साफ करने में एरिए को काफी टाइम लगा। अच्छा जनाब, आज जो है आज आखिरी दिन था बॉनी क्रॉम्बी का, जो मेयर ऑफ मिसिसागा थी, एज मेयर ऑफ मिसिसागा आज सिटी हॉल में वो बात कर रही थी, जहां पे के वो तकरीबन कोई 10 साल से शी हैज बीन एड्रेसिंग, क्योंकि 2014 से ये इलेक्ट होती जा रही थी मिसिसागा की मेयर, और उन्होंने कहा जी के इट वॉज अ प्रिविलेज टू सर्व दिस ग्रेट सिटी ऑफ मिसिसागा, देर हैज बीन स्वीट बिटर टाइम्स बट आई एम एट पीस नाउ, और वो कहती है जी कि मैंने चैलेंज अप किया है प्रीमियर डक फोर्ड को एज न्यू ऑन्टेरियो लिबरल लीडर इन द प्रोविंस, तो मैं जो है उनके अगेंस्ट खड़ी होंगी और मैं अपनी पार्टी को भी री इन्विग्रेट करूंगी, चेंज लाने की कोशिश करूंगी, और यही वैसे मोर और लेस मुद्दे थे जिनके के ऊपर इन्होंने इलेक्शंस भी लड़े थे। अभी इस वक्त जो है 9 सिटिंग लिबरल एमपीपीज हैं यहां पे क्वींस पार्क में, और वो कहती हैं जी कि आपको बिल्कुल ये चीज अनरियलिस्टिक नहीं लगनी चाहिए कि 2026 में हम पीसीज जो हैं उनको हम बीट कर सकते हैं और हम विन कर सकते हैं, मेरा गोल विनिंग के ऊपर रहेगा, और जो है हम डकफोर्ड की जो गवर्नमेंट है उसको टफ टाइम देंगे एज एन ऑपोजिशन, और उन्होंने वैसे उनके पास कोई सीट नहीं है अभी, तो क्या माजिद भैया प्रोसीजर है एमपीपी के लिए, इनको लड़ना पड़ेगा
एमपीपी के इलाके से ना, एक किसी एक इलाके से कोई सा भी एनीवेयर इन ओंटारियो ये, मगर नॉर्मली होता ये है कि जो जो लीडर चुना जाता है ना, तो उसके लिए कोई एक ऐसी
कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है,
कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हो जहां पर 100% इनको पता हो कि वो जीतेंगे, वरना ऐसा ना हो कि ताकि वो बाय इलेक्शन करवाए वहां पर
तो वो हार जाए,
वो हार जाए
तो फिर तो वो कैसे बनेंगी फिर लीडर,
तो इनको कोई सी एक सीट किसी से कहना पड़ेगा इनको कि भाई आप रिजाइन करें यहां पर और ये मैं आपकी जगह आऊंगी, और फिर कुछ प्रोमिसेज होती है फुलफिल करना पड़ता है।
या बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, जो हम तो मैं कहती किसी तरह से भी खुश नसीब नहीं है, हैं माजिद भाई,
वो क्यों?
वो ये देखो जरा, ये जो मैं खबर सुनाने लगी हूं ना आपको, ये आप सुने। अच्छा जी, कुछ अरसा पहले जो आईफोन्स थे ना उनके बैटरीज पे और सॉफ्टवेयर पे एक शिकायत आई थी, जिस वक्त ये एप्पल ने कहा था कि आप जो है ये इसको अपडेट कर लें अपने आईफोन्स को, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि शायद आपका ये स्लो हो जाएगा। अच्छा जी, अब एप्पल ने को जब ये पता चला लोगों से कि जी, लोगों ने कहा जी वैसे तो आप इंटेंशनली ये कर रहे हो, लेकिन फिर जिस वक्त सर्विस में वाकई फर्क पड़ा तो इनके ऊपर एक क्लास एक्शन लॉ सूट डाली गई थी। अच्छा जी, लॉ सूट जो डाली गई थी सबसे पहले अमेरिका में डाली थी, उसके अंडर एप्पल ने कंज्यूमर्स को कोई $500 million जो थे दिए थे। सेम केसेस जो हैं अंडर कैनेडा आईफोन पावर मैनेजमेंट क्लास एक्शन, कुछ कंज्यूमर्स ने इनके ऊपर डाले थे जो है क्लास एक्शन सूट डाला था और कहा था कि हमारे साथ सेटलमेंट करो। उसके अंडर अब एप्पल कनाडा के अंदर भी एज मच एज $150 पर अफेक्टेड फोन जो है वो दे सकता है, और इसकी अमाउंट जो होगी वो $14.4 million के पास रहेगी। $14.4 million के पास रहेगी। इन्होंने जब कहा था कि iOS सिस्टम्स जो हैं जो आपने बिफोर December 21st, 2016 अगर ये अपडेट किए थे और आपके जो iPhone 6 और iPhone 7 के अंदर खराबी आई थी तो वो एलिजिबल हैं ये लेने के लिए।
अभी मुझे बताएं आप एक बार एक सेंसिबल सेंस की बात बताता हूं आपसे। 2016 दिसंबर 2016
तो अभी तक उस बंदे ने वो फोन रखा होगा।
दिसंबर 2016 से पहले का एक हिस्सा है ये। और आईफोन 6 एंड आईफोन 7, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक दैट इज गोना स्टिल हैव दोस आईफोन 6 और आईफोन 7?
अभी तक लोगों ने रखे होंगे
या ये कि वो उसको जो है उन्होंने ट्रेड कर दिया होगा या किसी को दे दिया होगा,
नए ले लिए होंगे।
एग्जैक्टली, तो ये कहना तो बड़ा आसान है $14.4 million हम पे कर रहे हैं, मगर I don't think you're going to find too many people.
$150 वैसे भी क्या है माजद भाई?
और वो ये जो है ये हर एक, मेरा भी आईफोन एट दैट टाइम एकदम स्लो हो गया, इट वॉज ऑलमोस्ट डेड, एंड बैटरी जो है वो इतनी जल्दी ड्रेन हो जाती थी कि कोई ध्यान नहीं। मगर ये कि हमने चढ़ाया थोड़ी दिनों के लिए, जब बहुत ही तंग करने लगा
तो नया ले लिया। फिर
नया ले लिया,
लोग यही करते हैं बेचारे ज्यादा,
और ज्यादातर लोगों ने यही किया
या।
मगर अब इनको ख्याल आया तो इन्होंने कहा जी हम $14.4 million दे रहे हैं आप, और मिलेगा क्या $150?
जी बिल्कुल वही
$150 इन टेक
2023
$150 इन 2016 उसकी वैल्यू जो है अब क्या है?
हाँ, अब क्या है? जीरो.
थैंक यू.
चलिए. अच्छा मजीद भाई, जो सबसे अच्छी खबरें होती है ना वो आप मेरे लिए छोड़ देते हैं, बताते नहीं है, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ सबसे अच्छी खबरें जो है. ये भी एक अच्छी खबर थी, एप्पल आईफोन की. एक और अच्छी खबर है, GTA में बेतहाशा स्नो आ रही है जी. तो आप जी खुश हो जाएं, खासतौर पे जो अरफा बाजी है ना उनको बहुत खुश होने की जरूरत है. उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि स्नो नहीं आ रही है, बड़े जी वो क्लाइमेट के चक्कर पड़ रहे हैं और बड़े जी बीमारियां आ रही हैं. लो जी पहन फिर दबा दब फिर उन स्नो आ रही है. ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि 25 सेंटीमीटर से तो यहां पे GTA में आएगी, 50 सेंटीमीटर तक भी कोई कोई इलाकों में आ सकती है. अच्छा जी, एनवायरमेंट कैनेडा ने पहले जो थी वो दी थी इनिशियली तो विंटर स्टॉर्म एडवाइजरी दी थी फॉर कैलेडन, ऑक्सब्रिज, बेवर्टन, नॉर्थ डरहम, न्यू मार्केट, जॉर्जिना, नॉर्थ यॉर्क रीजन, और फिर उसके बाद ये कहा था इसको अपग्रेड किया था. और उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब जो है ये फ्राइडे से ही ये शुरू हो जाएगा और फिर जो है ब्रीफ स्पेल्स फ्रीजिंग रेन के भी रहेंगे और जो विंड चलेगी 70 किलोमीटर पर आवर रहेगी और विजिबिलिटी नहीं रहेगी. उसके बाद उन्होंने अपग्रेड फर्दर करते हुए कहा है जी कि कोल्डर, मच मोर कोल्डर जो है वो आर्कटिक एयर विल कम और उसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा लेक इफेक्ट आएगा. और उन्होंने इसलिए कहा है कि आप बिल्कुल पोस्टपोन करें जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है
और बाहर निकलने के लिए आप अपनी कंबल वगैरह अपने साथ रखें.
तो इसीलिए तो आज हमने कंबल पहना
था, इसीलिए मैं देख रहा था, वही
देख रहे हैं
उसी, उसी तरफ इशारा कर रहा था.
हाँ, बड़े इंटेलिजेंट स्मार्ट हो गए आप.
हाँ,
बहुत स्मार्ट हो गए, मेरे साथ रह रहे हैं. वाह क्या बात. अच्छा जी. अच्छा जनाब, कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी जो है उसने कोई 38 टाइप्स ऑफ सीरियल एंड ग्रेनोला बार्स जो हैं उनको रिकॉल किया करने के लिए बोला है. और ये ब्रांड जो था ये है क्वेकर कैनेडा, इनको बोला है. और इसमें मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ क्वेकर डिप्स थे, ग्रेनोला बार्स, चुई बार्स, योगर्ट बार्स, फ्रूट क्रम्बल बार्स, ये सारे. इसके अलावा जो है हार्वेस्ट क्रंच, लाइट एंड क्रिस्प रेजन्स, हार्वेस्ट क्रंच, ओरिजिनल ग्रेनोला सीरियल्स, इन सबको भी बुलाया है क्योंकि एजेंसी का कहना है कि इसके अंदर सैल्मोनेला का कंटेमिनेशन हो सकता है. इसके ऊपर डेट लिखी हुई है बेस्ट बिफोर जनवरी 11 से सितंबर 7, 2024 की इसमें डेट्स हैं. तो ये सारे जो हैं आप प्लीज ना खरीदें, अगर आपने खरीद लिए हैं तो वापस कर दें, आपको लेने की जरूरत नहीं है. द इंडिपेंडेंट की आज ये स्टोरी है जनाब, और ये स्टोरी तो इतनी ज्यादा चौंका देने वाली है कि आप जो है हरियाणा से परेशान हो जाएंगे. आपको पता ही है कि ईयू ने कितनी बेतहाशा सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशियन ऑयल के ऊपर, लेकिन इंडिपेंडेंट की यह स्टोरी बताती है कि यूरोपियन यूनियन की इंपोर्ट्स ऑफ रिफाइंड ऑयल जो है, जो कि रशियन ऑयल था जिसको कि इंडिया रिफाइन कर रहा था, वो ये इंडिया से खरीद रहे थे 2023 में और बड़े खुश हो रहे थे कि हमने जो उसके ऊपर रशिया पे सैंक्शंस लगाई हैं वो बड़ा काम कर रही हैं. मगर उनको पता नहीं था कि ये सारे का सारा ऑयल अनरिफाइंड इंडिया बड़ी समझदारी से खरीद रहा था और उसको रिफाइन कर रहा था और हाई प्राइस पे इनको बेच रहा था.
एक्सक्यूज मी, लेट मी करेक्ट यू.
हाँ जी,
कि आप कह रही हैं कि उनको पता नहीं था, उनको पता था. उनको इल्म था पूरा इस चीज का कि हम जो
yes.
यहाँ से इंडिया से जो ऑयल ले रहे हैं ये इट हैज कम फ्रॉम रशिया.
हाँ, और तो, इंडिया ने कभी झूठ नहीं बोला. इंडिया के साथ जब जब इनकी डिस्कशन होती थी वो कहते थे इट्स अ ह्यूज कंट्री, वी हैव अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर दिस, और हमको चीप ऑयल चाहिए और हम जो है हम डिजर्व करते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, तो हम रशियन क्रूड ऑयल ही लेंगे. एज अ रिजल्ट ये जो इनकी इंपोर्ट्स थी उसकी वजह से रशिया 2023 में बेतहाशा उसने पैसा कमाया. बेतहाशा उसने पैसा कमाया. अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने जो ये सब कुछ किया उसकी वजह से जो इंडिया था उसने भी बेतहाशा ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से. एवरेज था उसका 1.75 मिलियन बैरल्स पर डे एट 140% इंक्रीज ओवर 2022. और जो ये फिर जो ऑयल इंपोर्ट करता था इंडिया से ईयू, ये भी राइज किया 115% से फ्रॉम 111,000 बैरल्स पर डे इन 2022 से 2023 में आते आते 231,800 बैरल्स पर डे इन 2023. तो 115% इंक्रीज हुआ ये. तो ये सारा कुछ गया इन द फेवर ऑफ रशिया. और वैसे यूरोपियन यूनियन कहता था जी कि हम चाहते नहीं है कि रशिया जो है वो अपनी ऑयल की पावर यूज करे और ये यूक्रेन की वॉर में तेजी आए और ये हम हेल्प नहीं करना चाहते पुतिन साहब को। उन्होंने कहा जी इनफैक्ट उसने हेल्प किया पुतिन साहब को, अपनी उसने रिप्लेनिश की अपनी डिफेंस बजट अपनी मिलिट्री और ये करता रहा। यूरोपियन यूनियन G7 और ऑस्ट्रेलिया जो थे उन्होंने पुतिन साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और उसके ऊपर सैंक्शन भी लगाए, $60 per barrel प्राइस कैप जो है वो भी लगाया रशिया को नुकसान पहुंचाने का, लेकर उसको कोई नुकसान नहीं हुआ
बल्कि फायदा हुआ।
फायदा हुआ जाहिर है। तो इंडिया का वही कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट की स्टोरी थी कि इंडिया ने बहुत समझदारी की क्योंकि उसकी हर किसी के साथ दोस्तियां हैं, रशिया के साथ भी है और उसने खुलेआम कहा कि मैं रशिया से लूंगा। उनका गंदा ऑयल लेते थे, उसको रिफाइन करते थे और हाई प्राइस पे बेचते थे दुनिया में।
Exactly.
लंबे पैसे कमाए इंडिया ने भी,
बहुत
ठीक है जी, बहुत अच्छा,
स्मार्ट,
वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो जो पुतिन साहब हैं वो भी काफी स्मार्ट रहे, उन्होंने कहा जी इंडिया को दो, इंडिया की सबके साथ दोस्ती है।
अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात बताऊं, एक तीसरी कंट्री भी है जिसने यही काम किया, वो है चाइना।
यस यस,
चाइना ने भी बेइंतहा ऑयल लिया इससे, रशिया से, रशिया से ऑयल लिया, उसको रिफाइन किया और उसको आगे बेच दिया।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीप ऑयल लेके उन्होंने बेचा और बड़े पैसे कमाए जी। अच्छा जनाब, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी साहब, आज उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो बिल्कुल ईरान के साथ लड़ाई नहीं चाहता है। और उन्होंने कहा जी, हालांकि आपको पता ही है कि यूएस और यूके जो है कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक्स कर रहे हैं येमन के जो हूती मिलिशिया है उनको, क्योंकि वो जो है अटैक्स कर रहे हैं अमेरिकन और ये सारे यूरोपियन जो यूनियन के शिप्स गुजर रहे हैं रेड सी के ऊपर से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीजें और ज्यादा भड़क जाएंगी। आज भी हूतीज ने कहा है कि ये जो अटैक्स किए हैं यूएस ने उसमें 5 लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं। तो इसके ऊपर जॉन किर्बी ने कहा है कि हम एस्केलेट नहीं सिचुएशन करना चाहते हैं, हमें पता है कि ये चीजें जो हैं ये फिर मुश्किल हो जाएंगी संभालनी, और हमें यह भी पता है कि ईरान जो है हूतीज को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहा है, उनको सप्लाई कर रहा है मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, और उनको जो है ये शिपिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी सारा इक्विपमेंट दे रहा है, लेकिन हम बड़ा क्लियर कहना चाहते हैं ईरान को कि उसको ये स्टॉप कर देना चाहिए सारा। इसके ऊपर बात करते हुए हूतीज जो है उन्होंने यूके और यूएस को कहा है कि हम आपके लेजिटिमेट टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक करते रहेंगे, खासतौर पर आज का जो किया है उसके ऊपर जॉन किर्बी साहब ने बड़ा इनको वार्न किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करने से बड़ी खराबी रीजन के अंदर आएगी, जिसके जवाब में अगेन हुतीस ने कहा है कि जो कुछ इजराइल जीनोसाइड कर रहा है गाजा के अंदर लोगों के लिए तो सब इसलिए हम जो है ये अपना जारी रखेंगे। किर्बी साहब ने कहा कि ये जो इनके जो क्लेम्स हैं इसके अलावा जो जीनोसाइड के जो साउथ अफ्रीका ने किए हैं उसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसके ऊपर भी इनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि ये क्यों किया साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये जो क्लेम है मैरिटलेस है और ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। हम वैसे तो सपोर्ट अमरीका नहीं करता है कि इधर रीऑक्यूपाइजेशन ऑफ गाजा की जाए बाय इजरायली मिलिट्री फोर्सेज या पैलेस्टीनियंस को फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जाएंगी, उनका घर है उनका हक है कि वो यहां पर, लेकिन हमको लगता है कि एक रीवैम्प और एक रीवाइटलाइज जो है वो करना पड़ेगा पॉलिसी को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ ताकि इसका एक सोल्यूशन निकाला जा सके। बाजी वा पायन, बड़ी अच्छी गल है, तुसी अजे तक भी तुहानू नहीं लग रहा 3000 बंदा मार देता है इसराइल ने, तुसी कह रहे हो जी ये जीनोसाइड नहीं है, पायन फिर जीनोसाइड और कैसा होता है आप ही बता दो। सऊदी अरेबिया जो है जी उसने भी आज बड़ा कंसर्न शो किया है क्योंकि जाहिर है लड़ाई ज्यादा ही भड़क गई है हूतीज के बीच में और यूएसए और यूके के बीच में, तो उसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम बड़े कंसर्न से ये सारे मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहे हैं जो चल रहे हैं रेड सी के अंदर और जिसके के अंदर काफी स्ट्राइक्स किए गए हैं यूएस और यूके ने यमन के अंदर। सऊदी प्रेस एजेंसी जो है उसका कहना है कि किंगडम जो है वो बार बार ये कह रही है कि इलाके की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए काम करने की हमको जरूरत है और एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ वो होना चाहिए, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है इट इज कॉलिंग फॉर रिस्ट्रेंट बोथ साइड्स के लिए, यूके यूएस को भी और हूतीज को भी। वो कह रहे हैं अभी तक जो है 27 अटैक्स जो है इंटरनेशनल शिप्स के ऊपर सिंस 12 नवंबर 19 जो है वो रेड सी में किए जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूएस मिलिट्री का जो डाटा आया है। इसके अलावा यूएस और उसके पार्टनर्स ने हूतीज को कहा है कि तुम बहुत ही सख्त किस्म के जो है कॉन्सिक्वेंसेज फेस करोगे अगर तुमने ये अटैक्स ना रोके। यूके यूएस जो है उन्होंने फिर इसके जो टारगेट्स अब हिट किए हैं उसके ऊपर आज बात करते हुए जो हूती का लीड के लीडर हैं अब्दुल मालिक अल हूती, उन्होंने कहा है कि ये जो यूएस अटैक्स हो रहे हैं यमन के हूतीज के ऊपर ये विदाउट रिस्पांस नहीं रहेंगे, यानी कि हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर आप हमारे पे ज्यादा अटैक करेंगे तो हम भी करेंगे, और ये याद रखना कि नेक्स्ट अटैक्स जो हैं वो दे आर गोइंग टू बी बिगर। तो ये पायन चीजें जो हैं काफी भड़क सकती हैं। अच्छा जनाब, ताइवान जो है उसमें कल सैटरडे के दिन जो हैं इलेक्शंस होने वाले हैं, और आज जो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जोसेफ वू, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है चाइना को, और उन्होंने कहा है कि आप बिला वजह हमारे सिटीजन्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, यानी कि डरा रहे हैं और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कल का जो इलेक्शन होने वाला है, और हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं चाइना को कि हमारे जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर आप इंटरफेरेंस ना करें और ब्लेटेंटली हमारे लोगों को इंटिमिडेट ना करें। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको भी बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। बीजिंग ने इसके अंदर को कहा है कि भाई आप हमारे जो पोल्स हैं उसके अंदर अपना कोई अमल दखल ना रखें, लेकिन चाइना जो है उसने इसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हुए कहा है कि ये भाई आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है, और उन्होंने कहा जी कि हम आपके ये इन इलेक्शंस को बिल्कुल नहीं मानेंगे। ताइवान की जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसने भी वार्न किया है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को, जो लाए शिंग स्टे हैं, उनको कहा है कि तुम अगर ये जो गवर्न कर रहे हो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, तो ये थ्रेटन कर रही है यहां पे रीजन का पीस जो है। चाइना का जो ताइवान अफेयर्स ऑफिस है उसने भी सिमिलर बातें की हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये लाए जो है ये फिर से इलेक्ट होके आया तो ये जो है सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को कंटिन्यू करेगा और ये एक ईवल पैथ ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा। कुमिंगटैंग जो केएमटी जो कि ऑपोजिशन पार्टी है उसने भी बहुत ज्यादा डिनाउंस किया है लाए की कैंपेन को, और चाइना जाहिर है कि इस वक्त काफी नाराज है और वो समझता है कि इनको जो है बैकिंग है यूरोपियंस की, यूरोपियन जो कंट्री खासतौर पे यूएस की, तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ चाइना, तो जो चाइना का जो है कानून वही यहां पे चलना चाहिए। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ये जो सीबीसी का नया शो शुरू हुआ है बॉलीवुड, आप जरूर देखें, उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे एक फैमिली इंडिया से आई और उन्होंने एक काम शुरू किया यहां पे कपड़ों का, और फिर अब जो जितनी भी ब्राइड्स हैं उनको वो कैसे तैयार करते हैं, कैसे उनको टिप्स देते हैं, क्या वेडिंग के लिए उनकी कपड़े उनकी और दूसरी प्रेपरेशंस कैसे होती हैं, तो उसके ऊपर ये सारी स्टोरी है, तो आप जरूर देखें सीबीसी जेम के ऊपर एवरी संडे। इसके अलावा जनाब, जो विक्टोरिया चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल है उसके अंदर आप अपने बिजनेस के और अपने जो फैमिली के इवेंट्स हैं वो कर सकते हैं, 1400 लोगों को ये अकोमोडेट कर सकता है, 32 इसके अंदर से ज्यादा लग्जरी रूम्स हैं, तो अगर आपको इनके साथ अपना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। बहुत ही आइडली लोकेटेड है, 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में, इनका नंबर है 6479653823। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने आज फिर से कहा है कि पीटीआई के अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए तो उनको कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। आज ये हियरिंग सुन रहे थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाली थी अगेंस्ट पिशावर हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पीटीआई को उसका इलेक्टोरल सिंबल बैट जो है वापस करो। ईसा साहब ने आज बात करते हुए कहा कि ये बैट का तो ठीक है दिया गया है इनको, लेकिन क्या पिशावर हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि इनका जो इंट्रा पार्टी पोल्स थे वो इन लाइन विद लॉ थे, तो उन्होंने ऐसे ही इनको जो है बस सिंबल दे दिया है लेकिन ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछे हैं। एज अ रिजल्ट मुझे लगता है कि पिशावर हाईकोर्ट का डिसीजन फ्लॉड है एंड प्राइम फेसी है, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। और जो पीटीआई के लॉयर थे हामिद खान और ईसीपी के जो लॉयर थे मखदूम अली खान वो आज कोर्ट में प्रेजेंट थे। इसके अलावा पीटीआई के जो लॉयर अली जफर थे उन्होंने ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वाया वीडियो लिंक अटेंड की, तो अब जी फिर कट्टा खोलन लग गया है। पीएमएलएन जो है उसने जनाब आज अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है उसको शाया किया है और उसके अंदर तमाम जो है यूजुअल सस्पेक्ट्स, आई मीन ऑफकोर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी बेटी जो है मरियम, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा, सब के सब मौजूद हैं जो कि जी लड़ेंगे इलेक्शंस। जो हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं ये लड़ेंगे इलेक्शंस NA-130 एंड NA-123 से रिस्पेक्टिवली, हमजा लड़ेंगे NA-118, मरियम NA-118 और NA-159, ख्वाजा साद रफीक NA-122, शेख सोहेल असगर फ्रॉम NA-121 इन लाहौर, अयाज सादिक NA-120, अताउल्ला तारर जो हैं वो लड़ेंगे अगेंस्ट बीबी जरदारी इन NA-127, इसाक डार साहब जो है उन्होंने ये सारी की सारी डिटेल्स आज अपने एक्स पे डाली थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और भी जगहों से कंटेस्ट करेंगे जैसे कि PP-164, PP-158 और हमजा और मरियम जो हैं वो 150 पीपी 147 पीपी 159 से रिस्पेक्टिवली करेंगे. सोहेल शौकत बट वो चाहते थे कि एनए 120 से इलेक्शंस लड़ें और लेकिन उनको पीपी 151 दिया गया है और उनको कहा गया कि वहां से आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं विदड्रॉ करें. तो ये डिटेल्स जब जनाब इनकी भी आई हैं. पीटीआई के जो शेर अफजल मरवत हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो पिशावर से अब कंटेस्ट नहीं करेंगे पीटीआई के टिकट के ऊपर फॉर नेशनल असेंबली और केपी असेंबलीज, क्योंकि December 27, 2023 को पीटीआई के लीडर फ्रॉम केपी तैमूर खान झगड़ा. उन्होंने कहा था कि मरवत साहब जो हैं उनको पिशावर से नहीं लड़ना चाहिए. जब उन्होंने अपने पेपर सबमिट किए थे NA32 में, उन्होंने कहा था एक लेटर में जो पिशावर के लोग हैं उनको ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए. मरवत साहब ने कहा था मुझे कोई इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है, मुझे पीटीआई के फाउंडर यानी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैं पिशावर से लड़ूं तो इसलिए मैं मैदान में आया हूं. इसके अलावा पीटीआई की जो शंदाना गुलजार हैं उनको NA30 सीट पे टिकट दिया गया है. साजिद नवाज, अरबाब आमिर, अरबाब शेर अली, आसिफ खान, इनको भी जो हैं टिकट्स दिए गए हैं डिफरेंट एनए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए पिशावर के अंदर. अच्छा जनाब, एक दफा फिर से इंडिपेंडेंट सेनेटर हिदायतुल्ला खान जो है उन्होंने एक नई जो है रेजोल्यूशन डाली है सेनेट के अंदर, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये पोस्टपोन कर दें आप फरवरी 8 के पोल्स. और इस तरह की सिमिलर जो रेजोल्यूशन है आपको पता ही है कि ये पहले भी डाली गई थी. और इन्होंने कहा जी कि मैं कहता हूं सेनेट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को कि वैसे तो इनका काम पीसफुल इलेक्शन कराना है लेकिन इसको 3 महीने के लिए इलेक्शंस को आप डेफर करें. उसकी वजह यह है कि अभी जो है सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टारगेट किलिंग की जा रही है. ये बात इन्होंने एक दिन के बाद की है, जस्ट वन डे बिफोर पीटीआई और पीपीआई और जेआई जमात इस्लामी यानी इन सब ने, इन तीनों पार्टीज ने कहा था कि वक्त के ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए, 90 डेज में होने चाहिए थे, वो डिले हो गए हैं तो अब जो है फौरन इलेक्शन कराए जाएं. तो पीटीआई के जो सेनेटर थे अली जफर, उन्होंने बहुत सारे सिग्नेचर्स लोगों से लिए थे एक रिक्वेस्टेशन पे जिसमें के कहा गया था जी कि एटलीस्ट इस इशू को सेनेट के अंदर डिस्कस करना जो है वो जरूरी है. पीपीपी और जेआई ने सपोर्ट किया था पीटीआई को इसके ऊपर. जो रेजोल्यूशन है उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और हमारी जो है स्टेबिलिटी वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने में है अंडर आर्टिकल 224(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और इसलिए जो है ये जो January 5 को भी अभी रेजोल्यूशन पास की गई थी सेनेट में अगेंस्ट पोल्स वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अब फिर से ये ऐसे ना किया जाए. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब जी वो 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कि डेवोस में हो रही है स्विट्जरलैंड में January 15-19 में, उसमें ये हिस्सा लेंगे. आज पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज जारा बलोच ने इसकी डिटेल्स दी हैं. उन्होंने कहा जी 3 की जो इवेंट्स हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे और बोलेंगे भी. ये है प्रिवेंटिंग ईरा ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्टोरिंग फेथ इन ग्लोबल सिस्टम्स, प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक फ्रैक्चर. और इनका जो की नोट होएगा वो होएगा अंडर ट्रेड टेक ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस, ट्रेड टेक्नोलॉजीज ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस. और वो कहते हैं जी इसके अलावा वो बहुत सारी जो गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में. यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो क्लासिफिकेशन अभी आई थी थोड़े दिन पहले कि पाकिस्तान को हमने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला है, उसके ऊपर भी बात करते हुए मुमताज जहरा ने कहा कि ये बिल्कुल यूनिलैटरल और आर्बिट्ररी और सब्जेक्टिव डेजिग्नेशन है पाकिस्तान की, इसके अंदर कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सारी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव रहेंगी क्योंकि हम जो हैं हर तरह से रिलीजियस फ्रीडम्स हमने दी हुई हैं. इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेंगे. इसके अलावा ज़ैरा बलोच साहबा ने कहा कि जी जो पाकिस्तान है साउथ अफ्रीका ने जो डाली है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के वायलेशन के अगेंस्ट कि उसने वायलेट किया 1955 का यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन, उसको एंडोर्स करते हैं. और उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा जो January 5 अभी गुजरा था हमने वो ऑब्जर्व किया है एज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन डे फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑन दिस डे इन 1949 यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान इन्होंने अडॉप्ट की थी एक रेजोल्यूशन फॉर फेयर एंड फ्री प्लेबिसाइट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो दैट दे गेट द राइट टू लिव एज दे विश टू. तो उसके ऊपर आज सारी इन्होंने बातें की. हिंदुस्तान के ऊपर जी एक दफा से फिर से एलिगेशन आए हैं कि वो अपने जो डायसेंटिंग वॉइसेज हैं उनको वो चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं. आज एक ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई है, 34th वर्ल्ड रिपोर्ट 2024, और इसके ऊपर बात करते हुए मीनाक्षी गांगुली जो डेप्यूटी एशिया डायरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की, उन्होंने कहा जी कि इन 2023 बीजेपी जो है उसकी बेतहाशा डिस्क्रिमिनेटरी और डिविसिव किस्म की पॉलिसीज रही हैं, और इन्होंने कॉन्स्टेंटली कोशिश की है कि अब जो डिस्क्रिमिनेटिंग जो डायसेंटिंग वॉइसेज हैं उनको बंद किया जाए. रिलीजियस इन्होंने माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है और कोई रिस्पेक्ट शो नहीं की है जो डेमोक्रेसी के लिए. उन्होंने कहा जी कि यहां पर कॉन्स्टेंटली जो है अब्यूजेज जो है वो होते हैं इस मुल्क में, और अथॉरिटीज बजाय इसके के जो है विक्टिम का साथ दे बल्कि इस चीज को बढ़ावा देती है और आंखें बंद कर लेती है जब ये सारे जुल्म चल रहे होते हैं. ये 740 पेज की रिपोर्ट है जो कि रिव्यू करती है ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस इन 100 कंट्रीज, और हर साल जो है अपनी एक रिपोर्ट लेकर आती है. इसके मुताबिक इंडिया के अंदर जर्नलिस्टों को हरेस किया जाता है, एक्टिविस्ट और क्रिटिक्स को भी, उनके ऊपर जो है रेड्स डाले जाते हैं और उनके ऊपर जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बिला वजह की एलिगेशन डाली जाती हैं अंडर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इन फरवरी जो उन्होंने कहा जी कि इंडियन ऑफिशियल्स जो है उन्होंने बीबीसी के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था जब वो अपनी 2-part फिल्म दिखाना चाहते थे ऑन मोदीज रोल इन अलेजली यू नो कीपिंग अ ब्लाइंड आई वाइल मुस्लिम्स वर बीइंग किल्ड इन गुजरात. तो वो कहते हैं जी कि उसको इन्होंने बंद किया था और ब्लॉक कर दिया था. और जुलाई 31 को जो कॉम्युनल राइट्स नू के एरिया में हरियाणा में हुए थे जब एक हिंदू प्रोसेशन गुजर रहा था, तो वो कहते हैं जी कि ये इनकी आदत बन गई है बीजेपी की गवर्नमेंट की और एक पैटर्न बन गया है कि अथॉरिटीज जो है वो हिट करती हैं मुसलमानों को बाय इलीगली डिमोलिशिंग हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम प्रॉपर्टीज एंड डिटेनिंग मुस्लिम बॉयज एंड मेन. उसके बाद इतना इन्होंने जुल्म वहां पर नू में किया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो थी उसने बीजेपी लेड ये जो स्टेट है हरियाणा की उसमें उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि क्या तुम मुसलमानों का एथनिक क्लिंजिंग कर रहे हो कि नहीं. अब एक और चीज सामने आ रही है मणिपुर की, उसमें कहते हैं जी 200 के से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है, हजारों डिस्प्लेस्ड हैं, बहुत सारे सैकड़ों ही घर और चर्चेस जो उनको जलाया गया है, इंटरनेट को शट डाउन किया गया है, और ये कॉन्स्टेंटली लड़ाई जो मिटाए और कुकी के बीच में हो रही है वो उसमें फिर से एक दफा जो है बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है यहां पे मणिपुर में एन बीरन सिंह वो फिर से जो है इनको कुकी जो है जो ज्यादातर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं और अलेज कर रहे हैं कि ये तो जी इन्वॉल्व हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में और ये जो है सेंचुरीज दे रहे हैं म्यांमार से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, तो झूठ की में ये बात कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा जी अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये जो वायलेंस हुई है इंक्लूडिंग सेक्शुअल वायलेंस इन मणिपुर उसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है. ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इन तमाम चीजों के ऊपर देखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ये चीजें कैसे चला रहा है. सितंबर के अंदर उन्होंने कहा जी कि डजन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने मणिपुर के अंदर जो कुछ चल रहा था खासतौर पर सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन थी उसके ऊपर अपने कंसर्न शो किए थे, और वो कॉन्स्टेंटली यूनाइटेड नेशंस की जो दूसरी जो टीम्स हैं वो कहती हैं कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पीसफुल असेंबली जो है उसको बंद किया हुआ है खासतौर पर जम्मू एंड कश्मीर में. आज भी जम्मू एंड कश्मीर में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं. और इसके अलावा उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो ये बीजेपी के एमपी हैं ब्रिज भूषण सिंह जो कि थे प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उनके ऊपर भी बात की है कि कैसे जो हैं बहुत सारी जो फीमेल रेसलर्स थी 6 के करीब उन्होंने इनके खिलाफ बात की थी कि 10 साल तक ये लड़कियों को सेक्सुअली हरास करते रहे हैं, तो जिन्होंने इसके लिए फाइट किया जस्टिस के लिए उन तमाम फीमेल रेसलर्स जो हैं उनको फोर्सिबली सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिटेन किया. तो ह्यूमन राइट्स वॉच की आज की जो है जो बड़ी लंबी चौड़ी ये जो आई है उनकी रिपोर्ट उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया के ऊपर जरा थोड़ी सी नजर डालने की जरूरत है, और उन्होंने कहा जी कि हमने ये जो 740 पेज की जो रिपोर्ट लाए हैं ये सारी की सारी बेस्ड ऑन ये सारे बहुत सारे जो फैक्ट्स और इंटरव्यूज और वो चीजें हैं उसके ऊपर है, और उसके बाद फिर हमने जो है ये सारी प्रिपेयर की है और जो कुछ हम इंटरनेशनल मीडिया में देख रहे थे और जो कवर किया जा रहा था तो उसकी बेसिस पे हमें पता चलता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा कर्ब्स हैं क्रिटिक्स के ऊपर जो बीजेपी के क्रिटिक्स हैं उनके ऊपर. इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी राजनाथ सिंह साहब वो अब जो हैं यूके में पहुंचे हुए हैं. इनका ये फर्स्ट एक जो डिफेंस मिनिस्टर का विजिट है इन 22 ईयर्स टू यूके. और इसमें वो 2+2 बेसिस वाली जो है टेम्पलेट जो कि जापान यूज करता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं इंग्लैंड के साथ. वो कहते हैं जी कि हमारी बिल्कुल ऐसी ही सिमिलर स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया के साथ, और अब हम आपके साथ यूके के साथ भी करना चाहते हैं. हालांकि इस तरह का इनका अरेंजमेंट अभी तक फ्रांस जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी कि एटलीस्ट यूके के साथ तो ये चीजें बढ़ाने की जरूरत है. लेकिन जाहिर है कि वो कहते हैं हमारे बीच में बहुत सारे पोलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं, खासतौर पर जो है इंडिया जो है बहुत ज्यादा एतराज करता है यूके को, और उनको कहता है कि ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, ना सिर्फ ये कि जो खुलेआम आपके मुल्क में फिर रहे हैं, बल्कि यूके की पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे खालिस्तानी अंसर जो हैं वो जमा हो गए हैं. इसके अलावा जो बीबीसी की टू पार्ट वही जो फिल्म आई थी मोदी जी का रोल इन गुजरात राइट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया था. आज राजनाथ सिंह साहब ने जिनकी के मुलाकातें जो हैं अपने काउंटर पार्ट ग्रांट शैप्स, फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरून और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से हुई, उसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं तो उसको रिव्यू और डिस्कस करने से पहले हम ये चाहते हैं कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं इनको आप बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और फिर हम टारगेट सेट करेंगे फॉर 2030 रोड मैप फॉर फ्यूचर. राजनाथ सिंह का साहब का ये जो 3 दिन का दौरा है, दिस इज जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, मे बी लेस देन 2 मंथ्स आफ्टर ये जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के एस जयशंकर साहब, जिन्होंने के 5 दिन का दौरा किया था लंदन का ड्यूरिंग दिवाली 2023, और उसके बाद अब ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो ऑफिशियल हैं इंडिया के वो आए हैं. बहरहाल वो बार बार कहते हैं जी इंग्लैंड को भी कि आप खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लें, जबकि ये तमाम कंट्रीज यूएसए, इंग्लैंड और कैनेडा वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे कंट्री में, तो हम अनलेस एंड अंटिल कोई क्राइम करें हम उसको पकड़ के सजा नहीं दे सकते. और जनाब किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन साहब, फाइनली डिटेल्स आ गई हैं कि उनके ऊपर अब एक बायोपिक बनाई जाएगी और ये बायोपिक जो है 2025 में सामने आएगी, और इसमें वो कहते हैं जी बहुत ही ब्रेथ टेकिंग म्यूजिक, और ये जो इसका लेजेंडरी ये जो था म्यूजिक और आर्ट और आइकॉनिक डांसेस, इस सब को जिसने के बड़ा भी फैसिनेट किया दुनिया को, उसके ऊपर हम एक बड़ी ट्रू स्टोरी जो है वो ट्रेस करने की कोशिश इसमें करेंगे. लायंसगेट स्टूडियो जो है वो सारी इसकी डोमेस्टिक मार्केट की रिलीज जो है वो हैंडल करेगा, यूनिवर्सल पिक्चर्स वाले जो है इंटरनेशनली इसका सारा जो है रिलीज इसको करेंगे. प्रोडक्शन जो है वो जनवरी 22 से शुरू होने वाली है और इसको क्रिएट किया है ग्राहम किंग ने, जो कि मास्टरमाइंड है बिहाइंड लेजेंडरी बोहेमियन रैप्सोडी, और ये वो कहते हैं जी कि आएगी थिएटर्स में अप्रैल 18, 2025 को. इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अंतवा फुकुआ और इसके अंदर जो है जाफर जैक्सन जो कि माइकल जैक्सन का नेफ्यू है वो इनका रोल जो है वो प्ले करेगा माइकल जैक्सन का. तो अब पैन शक्ल तो बहुत मिलती है इनकी आपस में, बहुत मिलती है. अब वो बाल वाल वैसे बना देंगे और कपड़े वपड़े वैसे डाल देंगे ना इसको, तो ये बिल्कुल माइकल जैक्सन लगेगा. तो वो कहते हैं जी कि अब जो है वो तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं जिसपे. फिल्म मेकर नाग अश्वन की जो साइंस फिक्शन फिल्म है काल्की 2898 AD, जिसका के बहुत लोगों को इंतजार था क्योंकि इसके अंदर साउथ के जो सबसे बड़े हीरो हैं प्रभास, उनके साथ दीपिका पादुकोण फॉर द फर्स्ट टाइम करने वाली थी, और काफी दफा इसका रिलीज जो है वो चेंज किया जा चुका है. पहले कहा गया था जी कि ये जनवरी 12th को रिलीज होएगी, फिर कहा गया जी कि ये जो है की जाएगी रिलीज अभी कुछ और थोड़े टाइम में, और फिर लोगों को पता नहीं था कि इस थोड़े टाइम का क्या मतलब है, तो आज फाइनली उन्होंने कहा जी कि इसको हम रिलीज कर रहे हैं मई 9, 2024 को. इसको जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं विजयंती मूवीज के अंडर प्रोड्यूस किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ी मल्टी लिंगुअल बिग बजट मूवी है, और इसके अंदर आज पहला पोस्टर जो है प्रभास का वो भी इन्होंने रिलीज किया है, और उसमें इन्होंने पोस्टर के साथ जो अपने सोशल मीडिया पे लिखा है उन्होंने कहा जी कि ये स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी, जो एंड हुई थी 6000 साल पहले, उसको फिर से हम शुरू करेंगे मई 9, 2024 को. प्रभास और दीपिका पाडुकोण के साथ इस फिल्म में देखे जाएंगे बिग बी, कमल हासन और दिशा पाटनी भी नजर आएंगे आपको इस फिल्म में. अक्षय कुमार साहब जो हैं जी वो मुंबई के मेट्रो में सफर कर रहे थे, और वैसे तो वो बड़ा छुप के कर रहे थे, उन्होंने एक पी कैप पहनी हुई थी, मुंह के ऊपर जो है वो मास्क पहना हुआ था, और जो है वो आपको पता ही अक्सर मेट्रो में सैर करने निकल जाते हैं अक्षय कुमार साहब, लेकिन आज तो वो पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी फिर भी एक उनके फैन ने उनको पहचान लिया. वो बैठे हुए थे प्रोड्यूसर दिनेश विजय के साथ और इन्होंने पहने हुए थे सारे काले कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक हुडी, ब्लैक कैप. लेकिन एक जो फैन था उसने नोटिस इनको कर लिया और इनकी तस्वीरें लेके फिर सोशल मीडिया पे डाली.
क्या बात.
टोरंटो मेपल लीव्स जो हैं जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला है और उसमें उन्होंने कहा जी कि जस्टिन वीवर जो है अब वो पार्टिसिपेट करेगा इन NHL ऑल स्टार वीकेंड जो शुरू हो रहा है February 1-3 को एट स्कॉशिया बैंक एरेना. उसके अंदर ये जो वीडियो है वो शो करता है कि बीवर को एक मैसेज मिला है लीव्स का जो स्टार है ऑस्टन मैथ्यूज की तरफ से, जो कि कह रहा है हे जस्टिन बीवर, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट ऑल स्टार्स वीकेंड, होप यू एंजॉय वेरी बिग प्रेजेंट फ्रॉम टीम. और वो कहता है सी यू सून बट लव यू. तो देखा जा रहा है फिर उस इसी वीडियो में कि जो जस्टिन बीवर है वो एक गैराज जो है उसके अंदर गया है और उसमें उसको एक मैसिव जो इनका टोरंटो मेपल लीव्स का मैस्कॉट है वो मिला है और उसके ऊपर जो है मेपल लीव्स का वो बना हुआ है, लोगो बना हुआ है. तो वो कहता है ओ माय गॉड इट्स सो ह्यूज. तो ये आज इसने
ऑस्टिन मैथ्यूज एंड बीवर जो है दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स.
फ्रेंड्स जी 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 जी. तो बस वो लोग जो है बड़े एक्साइटेड हो गए हैं उसके अंदर. एंड जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने आज अपना पहला T20 एज कैप्टन जो है वो कैप्टन किया था मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन पाकिस्तान हार गया इस मैच को 46 रन से. ये मैच जो था एट ईडन पार्क ऑकलैंड में था. हालांकि साइफ अयूब जो थी उसने एक्सक्यूज मी ब्रिलियंट स्टार्ट दी थी और उसने 27 रन बनाए थे फॉर ऑन 8 बॉल्स. लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान की सारी टीम जो है वो क्रम्बल कर गई. पाकिस्तान वॉज 130 for 4 इन 12.4 ओवर्स और ये वैसे इन पोजीशन थे टू चेज द टारगेट, लेकिन आजम खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया और पाकिस्तान जो है फिर वो ट्रबल्स में चला गया. फखर जमान जो थे 15 उन्होंने बनाए फॉर 10 बॉल्स. इफ्तिखार अहमद ने 24 for 17. सिर्फ बाबर आजम जो हैं, हां आजम खान ने 10 for 9 बनाए. बाबर आजम जो हैं उन्होंने सिर्फ 57 ऑन 35 बॉल्स बनाए. टिम साउदी जो हैं उन्होंने 3 विकेट्स लिए. एडम मिलने और बेन सियर्स ने भी 2-2 विकेट्स ली. इससे पहले डैरल मिशेल जो थे उन्होंने 57 बनाए थे और केन विलियमसन ने 61. तो पाकिस्तान ये पहला तो हार गया. अब देखेंगे नेक्स्ट 2 जो है T20 उसमें क्या होता है.
अब के मारा.
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. अब के मार के देखो.
हाँ
ठीक है. AFC एशियन कप 2023 इज बैक इन दोहा कतर. बहुत ज्यादा कतर के खिलाफ बातें आई कि ओ बड़े राइट्स किस्म यहां पे अब्यूजेस हैं, इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है. लेकिन अब लोग एक दफा कतर चले गए हैं तो उनको मजे लग गए हैं. ऐसी जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी उन्होंने वर्ल्ड कप के बीच में दिखाई है कि अगेन इन्होंने ये अब दूसरा जो है कप ये जीता. आपको पता ही है कि ये कप जो था चाइना कराने वाला था, लेकिन चाइना ने कहा कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पेंडेमिक फिर से फैल रहा है और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है. उसके रहते हुए फिर कतर ने ये कप जो है भी जीता था. तो इसलिए बेतहाशा कतर के अंदर एक्साइटमेंट है. 11 out of 24 टीम्स जो है ऑलरेडी वहां पे पहुंच गई हैं. टूर्नामेंट आज से स्टार्ट हो गया है. ओपनिंग मैच जो था वो एट लसेल स्टेडियम था बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस कतर वर्सेज लेबनान. और इससे पहले जो है मैच शुरू होने से पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसको सारे शहर के अंदर दोहा में फिराया गया था, खासतौर पर सूक वाकिफ अहमद स्क्वायर एंड द पर्ल कतर के अंदर, जहां पे बेशुमार जो हैं वो टूरिस्ट आते हैं. और बहुत सारे लोगों ने ये जब गुजर रही थी ट्रॉफीज के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई और फिर ऑफिशियल मैस्कॉट्स थे उनके साथ भी खिंचाई. ये जो है थर्ड टाइम है कि कतर होस्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट को, यानी कि AFC को जो है ये अफ्रीकन जो कप है उसको यहां पे पहला उन्होंने कराया था 1988 में, दूसरा 211 में और अब जो है ये करा रहे हैं. तो कूडोस टू कतर भाई, कमाल है, वेरी गुड. मुझे लगता है कि सऊदी और यूएई को भी वैसे कराना चाहिए, उनके पास भी. लेकिन यूएई के अंदर तो क्रिकेट मैचेस बेताशा होते हैं ना, तो यूएई परहैप्स इज अट्रैक्टिंग क्रिकेट एंड कतर इज अट्रैक्टिंग
सॉकर.
यस सॉकर,
फुटबॉल
जनाब. एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट T20 वर्ल्ड कप जो कि शुरू होने वाला है डैलस के अंदर एट ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम के अंदर. और उसमें जो पहला जो मैच है जो ओपनर होएगा वो होएगा USA और कनाडा के बीच में. और ये पहला मैच होएगा June 1, 2024 को. और ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि यूएसए के अंदर इतना मैसिव जो है ये इवेंट हो रहा है. बेसिकली ये तो ये सारे का सारा जो बड़ा जो यानी ज्यादा जो मैचेस हैं वो तो कैरेबियंस के अंदर होंगे. यूएस जो है वो 16 मैचेस यहां पे करेगा एट थ्री वेन्यूज इन डैलस और न्यूयॉर्क और फिर ब्रॉवर्ड काउंटी इन फ्लोरिडा. इसके अलावा जी ये करेंगे 45 मैचेस जो हैं वो वेरियस आइलैंड्स जो हैं कैरेबियन के उसके ऊपर होंगे. 30 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी. आपको पता ही है कि यूएस और कनाडा जो टॉप टीम्स हैं उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो दो टीम्स हैं ये काफी हाइप कहते हैं जी इन्होंने क्रिएट की हुई है. और जो 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, आपको पता ही है कि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स और रिसोर्सेज मिलते हैं. कनाडा की ये जाहिर है कि रहेगी कोशिश कि उनको फिर से जो है वो पार्ट ऑफ द हो जाए बिग टीम्स, ताकि उनको भी आईसीसी से कुछ पैसे वैसे मिले ताकि वो गेम ऑफ क्रिकेट को यहां पे बढ़ा सकें. पहला जो रिकॉर्डेड इंटरनेशनल मैच हुआ था यूएसए और कनाडा के बीच में वो खेला गया था सितंबर 1844 में एट सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब इन मैनहट्टन. ऑटी कप का ये मैच था. इसने इतना ज्यादा इंप्रेस किया था जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के जॉन मैकडोनल्ड साहब के, उन्होंने कनाडा को क्रिकेट को कनाडा की ऑफिशियल स्पोर्ट जो है उसका दर्जा दिया था इन 1867 में. और फिर उसके बाद जो है अब दोनों जो है ये जो मैच ये जो होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, इसमें अपनी मेडन अपीयरेंस जो है वो देने वाले हैं. कनाडा जो है उसका तो कुछ एक्सपीरियंस है, उसने तो कुछ क्रिकेट खेली है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यूएस का शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है. और ये जो
लोग नजर आएंगे आपको उसमें, अब हमारे लोग नजर आएंगे
ज्यादातर, हाँ जी इंडियन पाकिस्तानी ही नजर आएंगे. और अभी तक जो कनाडा है वो इस तरह के चार बड़े मैचेस में टूर्नामेंट्स जो उनमें पार्टिसिपेट कर चुका है, लेकिन लास्ट इसने जो पार्टिसिपेट किया था एक इंटरनेशनल मैच में वो 2007 था. और यूएसए ने लेकिन कभी भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट है वो कभी उसकी टीम ने नहीं खेली है, तो इस दफा पहली दफा जो है वो खेलेंगे. तो ये है जी हमारी आज की खबरें.
बस
मजिद भाई मैं क्या
इतनी ज्यादा खबरें सुना दी कि मैं मुझे मेरा दिल चाह रहा कि मैं दो दिन की छुट्टी दे दूं आपको.
हाँ मजिद भाई प्लीज दे, मैं बहुत थक गई हूँ बोल
मैं ये देख रहा हूँ
और सिर्फ आपको मेरा ख्याल.
मगर आप लोग जवान लोग तो थकते नहीं है,
लेकिन आप तो उल्टी कर दी उस बात पे
जवान
कि मैं तो जवान हुई नहीं. आपने तो कहा ये गलत खबर दी है आरफा भाई ने, मैं तो जवान हूं नहीं.
डोंट बिलीव इट. ये थी हमारी आज की खबरें, बाकी की खबरें इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब कब, मंडे वाले दिन
होगी या नहीं होगी.
मंडे को आप अच्छे गरम, मेरा ख्याल है कोई
मोटे कंबल शंबल
कंबल शंबल पहन के निकलिएगा घर से, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी इन -20s.
चलो फ्लोरिडा चलिए, फ्लोरिडा से प्रोग्राम करेंगे मजद भाई.
यार आइडिया. बाकी की खबरें अब आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन, उस वक्त तक इजाजत. मैं ले चलता हूँ आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद. एंजॉय कीजिए.
थैंक यू मजद भाई, आई विल सी यू ऑन मंडे.
क्यों कितना चाहे और तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और इस जगा गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया तेरी तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा हिस्सा है कह दिया है ये मैंने मेरे रब से तेरे लिए मैं कहाँ से टकराऊंगा सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा कुछ रात दे
DJ Ricky.